ಸದ್ಯ ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ ಯಾರ್ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಮಂಗಲಾಚರಣ ಕಾ ಅರ್ಥ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿದೆ ವೀತರಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಹೋತಾ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ವಹ ಜ್ಞಾನ ಸಂ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ केवल ज्ञानी का ज्ञान संपूर्ण लोक आलोक को जानता है। आकाश में रहने वाले सूर्य और चंद्र असंख्यात द्वीप समुद्रों में केवल केवल ज्ञान तो मंगलाचरण का अर्थ केवल ज्ञान तो संपूर्ण लोक को भी जानता है प्रकाशित करता है और अलोक आकाश को जानता है उसको भी प्रकाशित करता है किंतु करोड़ों सूर्य और चंद्र मिलकर के भी एक मध्य प्रदेश को एक मध्य लोक को ही प्रकाशित करते है ना कहाँ हैं ये असंख्यात सूर्य मध्य लोक में सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, किंतु मध्य लोक के जगत को ही केवल प्रकाशित करता है, केवल ज्ञान तो संपूर्ण तीन लोक को प्रकाशित करता है। सूर्य मध्य लोक को जानता है प्रकाशित करके, अपना टार्च मारकर देखकर केवल मध्य लोक को जानता है, लेकिन केवल ज्ञान का टार्च इतना बड़ा है कि अलोक आकाश में भी उसका प्रकाश जा रहा है और तीन लोक में भी सब जगह उसका प्रकाश जा रहा है। तो कौन सा ज्ञान बड़ा हो गया, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरी दे, करोड़ों सूर्यों का भी उल्लंघन जिस सूर्य ने किया है, उस सूर्य वाले आत्मा को नमस्कार, ने केवल ज्ञानी भगवान को नमस्कार है। मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माड़ी दे, और जिसकी दिव्य ध्वनि संपूर्ण लोक का हित करती है, ऐसे वीतरागी परमात्मा को नमस्कार। मत्तु एने और, मत्तु एने और, यार एने जिसकी दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनियु लोक हितव माड़ी दे, लोक के हित को करती है, की है। मूरु लोक दल्ली यार कीर्ति व्याप्त वागी दे, केवल ज्ञान होने के कारण से केवली भगवान के सामने अपनी शंका निवारण के लिए सारी दुनिया दौड़ आती है, दौड़ दौड़ करके आती है, हमारी भी बात पूछो, हमारी भी बात पूछो, पूछने के लिए। सबसे बड़े ज्योतिषी अगर कोई हैं दुनिया में तो केवल ज्ञानी हैं। आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने इतिहास के अनंत इतिहास को, भविष्य के अनंत भविष्य को केवल ज्ञानी से पूछ सकते हैं, शंका समाधान कर सकते हैं। इसलिए इतने बड़े केवल ज्ञानी का प्रचार यानी उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति संपूर्ण तीन लोक में व्याप्त रहती है। स्वर्ग से देवेंद्र भी आता है केवल ज्ञानी के चरणों में उपदेश सुनने के लिए, मध्य लोक के चक्रवर्ती भी पहुंच जाते हैं, तो अन्य लोगों की बात ही क्या है, उनके साथ ही हो जाते हैं। अब नारकी भी आ सकते थे, लेकिन आने का कोई मार्ग नहीं है, उनका गमन मध्य लोक में नहीं हो सकता। मनुष्य, देव और तिर्यंश, ये तीनों मिलकर के भगवान के समोशरण में उनकी वाणी सुनने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे भगवान की वाणी ये जीव सिद्धांत चर्चा है, इसके भीतर वही वही चर्चा। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि ये वनस्पति और पृथ्वी लेकर के हमको क्या करना है, हाँ, इसकी चर्चा सुनकर के क्या करना है, ऐसा तो नहीं लगता, नहीं लगता है ना। इसकी चर्चा को नहीं सुनेंगे तो जीव दया कैसे करेंगे, जीव दया ही जैन धर्म है। लास्ट में जाकर के अपने को करना क्या है, इन्हीं जीवों को बचाने के लिए इनके सारे योनि स्थानों का ज्ञान हमारे लिए होना आवश्यक है। ऐसा नहीं सोचना कि ये सब कुछ जानना व्यर्थ है, हमको तो अपनी बात सुनना है। क्या सुनना है, वही पंचेंद्र विषय, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे साहूकार बनते हैं, कहीं कैसे गरीब बनते हैं, ये चर्चा सांसारिक चर्चा यहाँ नहीं होती, यहाँ परमार्थ की चर्चा होती है। परमार्थ यानी धर्म, मोक्ष तत्व की, जीव तत्व की चर्चा होती है। तो जीव तत्व को समझने के लिए अपन बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है, पुण्य है, जो पंचम काल में भी इतना विपरीत माहौल होते हुए भी हम सुन रहे हैं, ये क्या कम पुण्य है हमारा। चतुर्थ काल में भी सुनना दुर्लभ था, सबको समूह शरण में प्रवेश करने का अवसर नहीं था, और हम पंचम काल में होते हुए भी साक्षात केवली की वाणी सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य है। मूरो लोक दल्ली यार कीर्ति व्याप्त वागिदे, भगवान केवल ज्ञानी हैं इसलिए तीनों लोकों में उनकी ख्याति व्याप्त है। अंथ देव देवरल्ली नन्न तलियो बागिदे, जिनका ज्ञान लोकालोक को प्रकाशित करता है, करोड़ों सूर्य और चंद्र से भी अधिक प्रकाशमान हैं, और जिनकी दिव्य ध्वनि के कारण तीनों लोकों का हित होता है, और तीन लोकों में इसी कारण से जिनकी ख्याति व्याप्त है, ऐसे वीतरागी भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा अर्थ है। दूसरा पद्य है, यार ज्ञान पाप कर्म यद्दु शुद्ध वागिदे, जिसका ज्ञान संपूर्ण पाप कर्म को जीत कर नष्ट कर शुद्ध हो चुका है, अरहंत भगवान के पास घाती कर्म नहीं है। घाती कर्म कितने होते हैं? चार होते हैं। वो चारों ही घाती कर्म पाप कर्म कहलाते हैं, उसमें से एक भी पुण्य प्रकृति नहीं है। घाती कर्म सभी पाप कर्म हैं। अघाती कर्मों में कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं और कुछ पाप प्रकृतियां हैं, किंतु घाती कर्म तो पूरी तरह से पाप प्रकृतियां हैं। ऐसे संपूर्ण घाती कर्मों को जीत कर जिनका ज्ञान ने शुद्ध दशा को प्राप्त कर लिया है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ऐसे वीतरागी भगवान को, भगवान के उस ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को नमस्कार किया है। अमितवाद शक्ति इंद सकल तत्व तिलिदिदे, अमित, अमित किसका नाम? किसी बच्चा का नाम नहीं, अमित, अमित बच्चन। अमित यानी अनंत, जो मित नहीं है उसको अमित कहते, अमित यानी अनंत। उनका ज्ञान मित रूप है क्या अमित रूप है? ये केवली भगवान के ज्ञान का नाम है अमित। आप लोग अपने घर में अपने बच्चों का नाम अमित कर देते हैं, ठीक है, उसका संसार अमित है, पीछे अनंत काल से संसार ही किया है, उसका कोई अंत है? अनंत है, उस अपेक्षा से अमित है। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से अमित बनना चाहिए अमित को, हाँ वो बन जाए, इसलिए आप अमित नाम रखते हैं, और ये अमित समाप्त हो जाए, ये अमित प्राप्त हो जाए, इस भावना से आप नाम रखते हैं। तो अमितवाद शक्ति इंद, अमितवाद अनंत शक्ति से, शक्ति इंद शक्ति से सकल तत्व तिली दे, अनंत ज्ञान की शक्ति से सकल तत्व यानी सात तत्व हैं पूरे लोक में, जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष, सात तत्वों को अनंत ज्ञान के द्वारा उन्होंने जान लिया है भगवान ने। लोकदल्ली वीत राग पूज्य पदवी वंदी दे, इस तीन लोक में भगवान का वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान वीत राग पद को प्राप्त कर चुका है। वीत राग पद को प्राप्त करने से ही पूज्य पद को भी प्राप्त कर चुका है। वीतरागता ही पूजनी होती है जैन धर्म में, उस वीतराग पदवी को नमस्कार किया है। अंथ देव देवरल्ली नन्न तलियो बागिदे, अंथ अंद्रे यंथ यार ज्ञान पाप कर्म यद्दु शुद्धवागिदे, ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಹೊಂದಿದೆ ಅನೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯಾ ಹೇ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿಯೇ, ವಯಸ್ಸೇ ದೇವ್ देवाधिदेव, देव देवरलिन देवाधिदेव, देवों में भी जो श्रेष्ठ देव हैं। कितने प्रकार के देव हैं? रागी देव और वीतरागी देव। वीतरागी देव कौन? वो जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं सामान्य मुनि महाराज, उनमें भी ये श्रेष्ठ हैं। एक सामान्य अरहंत केवली है और एक तीर्थंकर अरहंत केवली है, तो इनमें कौन श्रेष्ठ? तीर्थंकर को हम देवादि देव कहते हैं। दो प्रकार के देवों में वो श्रेष्ठ हैं। स्वर्ग के चतुर्निकायिक देवों से भी वंदनीय हैं, इसलिए श्रेष्ठ हो गए। और तीर्थंकर पद होने के कारण से वीतरागी केवल ज्ञानियों में भी वो पद विशेष के कारण, तीर्थंकर पद विशेष के कारण श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे अंत देव देवरली, उस प्रकार के देव देवादि देव के चरणों में ही मेरा मस्तक झुका हुआ है। बागीदे यावागुलू बागीदे, यावागुलू बागीदे। यार ज्ञान शक्तियु कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿಯು ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಂಥ ದೇವಾದಿದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರ ಜ್ಞಾನವು ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆಯೋ, ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಏಳು ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಹೊಂದಿದೆಯೋ, ಅಂಥ ದೇವಾದಿದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಗಲಾಚರಣಕ ಅರ್ಥ. कल एक चार्ट छूट गया और देवा देवगति के चार्ट पर चले गए. जन्म के भेदों के साथ स्वामित्व एवं गुणस्थान विशेष, कौन सा चार्ट छूट गया था? पेज नंबर 56 वाला, पेज नंबर 56. हम गर्भ जन्म वाले जो जीव होते हैं वे दो ही गति में होते हैं, है ना? देव गति में गर्भ जन्म नहीं होता, नरक में गर्भ जन्म नहीं होता. गर्भ जन्म वाले जीव दो ही गति में हैं, तिर्यंश गति और मनुष्य गति. ये जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? तो देखो, कर्म भूमि में गर्भ जन्म वाले रहते हैं, भोग भूमि में गर्भ जन्म वाले रहते हैं, और म्लेच्छ खंड में भी गर्भ जन्म वाले जीव रहते हैं. इनको समझेंगे. गर्भ जन्म के भेद कितने हैं? तीन हैं. भेद दिया है ना, पहला वाला जरायुज, दूसरा वाला अंडज और तीसरा वाला पोत जन्म. जरायुज अंडज पोतज, इन जरायुज जन्म का अधिकारी मनुष्य भी है और तिरंश भी है. मनुष्य में भी दो भेद करना चाहिए. कर्म भूमिज मनुष्य, आर्य खंडज खेचर, विद्याधर एवं भूचर मनुष्य. कर्म भूमि में दो प्रकार के मनुष्य हैं, खेचर यानी विद्याधर. ये कहाँ रहते हैं? विजयार्ध पर्वत दिखाया था ना, विजयार्ध पर्वत के श्रेणी में रहने वाले विद्याधर ये खेचर कहलाते हैं. खे ख यानी आकाश, चर यानी चलने वाले. विद्याधर सभी जब कभी भी आकाश में ही विचरण करते रहते हैं. क्योंकि उनको विद्या शक्ति रहने से वे आकाश में चलने फिरने वाले माने जाते हैं। खेचर, कोई पत्थर हिल रहा है, देखो। विद्याधर मनुष्य, चर मनुष्य, हो सकता है जीवित मनुष्य है, ऐसा नहीं कि अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त तक बन गया है, शरीर रचना हो चुकी है, उस समय में वह देव पहले गुणस्थान वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो पर्याप्त तक अवस्था में पहला गुणस्थान भी है। अब दूसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान कब होता है ये तो पता चल गया है। किसको होता है? जो प्रथमोपशम सम्यक से, कौन सा सम्यक दर्शन? क्षयोपशम नहीं, हाँ, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि च्युत होकर दूसरे गुणस्थान में नहीं आता। प्रथमोपशम सम्यक से च्युत होकर नियम से द्वितीय गुणस्थान में आता है। तो ऐसा भोग भूमि का कोई मनुष्य वहां जाने के बाद मिथ्यात्वी था और उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अंतर मुहूर्त के बाद नियम से वह द्वितीय गुणस्थान में गिरेगा, गिर गया, तो इस प्रकार से द्वितीय गुणस्थान भी भोग भूमि के मनुष्य को हो सकता है। चतुर्थ तृतीय गुणस्थान हो सकता है क्या? नहीं, तृतीय गुणस्थान भी हो सकता है। पहले से लेकर चार गुणस्थान हैं तो तृतीय गुणस्थान भी होता है। तो तृतीय गुणस्थान कैसे होगा? मिश्र परिणाम भी हो सकते हैं, सम्यक तो रूप और मिथ्यात्व रूप, दोनों रूप मिश्र परिणाम भी देव उस मनुष्य को हो सकते हैं, इसलिए तृतीय गुणस्थान भी होगा। चतुर्थ गुणस्थान, तो चतुर्थ गुणस्थान तो होता ही है, कोई मिथ्या दृष्टि भोग भूमि मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो पहले गुणस्थान से डायरेक्ट चौथे गुणस्थान में जाता है। इस प्रकार पर्याप्त अवस्था में उन मनुष्यों को पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, चारों गुणस्थान हैं। पंचम गुणस्थान हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता, न कुभोग भूमि के मनुष्यों को, न सुभोग भूमि के मनुष्यों को, न देव को, न भोग भूमि के मनुष्यों को, न भोग भूमि के तिरंचों को, न नारगियों को, और म्लेच्छ खंड के जीवों को तो एक ही गुणस्थान है, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो। म्लेच्छ खंड कर्म भूमि में आता है क्या भोग भूमि में? कर्म भूमि में आता है, कर्म भूमि में होकर के भी उनको एक ही गुणस्थान, उस प्रदेश में जब तक रहेंगे। देखो, क्षेत्र के निमित्त से भी परिणामों पर असर आता है, यहां आ रहा है तो वहां क्यों नहीं आएगा? आ रहा है कि नहीं? पंडाल से जरा भी बाहर जाते हैं तो वही माहौल है संसार का, विषय कषायों का, क्षेत्र का प्रभाव है ये, तो ये प्रभाव वहां निरंतर है, निरंतर है। एक भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और वे जीव इतने दृढ़ मिथ्यात्व के संस्कार वाले होते हैं, वही जन्म वहां म्लेच्छ खंड में जन्म लेते हैं। पूर्व भव में जो धर्म कर्म कुछ भी नहीं करता, जिसका जीवन सोना 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 व्यतीत होता है, पंचेंद्र विषय कषायों में गोता खाता रहता है हमेशा, वो जीव मान के चले कि उनको मनुष्यायु का बंध हो गया, तो वह कर्म भूमि का मनुष्य उसके यहाँ का मनुष्य नहीं बनेगा, आर्यखंड का, आर्यखंड का मनुष्य नहीं बनेगा। वो कहाँ जाएगा? म्लेच्छखंड में। वहाँ का मनुष्य बनने के लिए भी मंद कषाय चाहिए। मंद कषाय के बिना तो मनुष्यायु का बंध नहीं होता। परंतु यहाँ जो धर्म नहीं करता वो म्लेच्छखंड में ही जन्म लेता है। और वहाँ क्या है, धर्म की बातें वहाँ पर बिल्कुल कहीं से भी सुनने को मिलती ही नहीं। कोई सत्संग नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ भौतिकता। और वो पर्याय क्यों मिलती है? आर्यखंड में जन्म लेने के बाद यदि थोड़ी सी भौतिकता से दूर होकर धर्म तत्व चर्चा नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे परमार्थ का, वैसे वैसे सुना सुना ही पूरा जीवन निकल जाएगा। हम बाहर बाहर ही भटकते रहेंगे। तो निश्चित बात है, यदि मंद कषाय के साथ ऐसा मनुष्य मरण करता है तो पुनः मनुष्य तो बन सकता है, लेकिन म्लेच्छखंड का मनुष्य बनेगा। यदि तिरंच आयु का बंद कर रहा है तो म्लेच्छखंड का तिरंच बनेगा, कर्म भूमि का भी नहीं बनेगा, आर्यखंड का तिरंच नहीं बनेगा। क्योंकि आर्यखंड का तिरंच बनेगा तो यहाँ पांच गुण स्थान हो सकते हैं, ऐसा माहौल ही नहीं मिलेगा। अपने जीवन में पहले से ही माहौल नहीं बनाया है, माहौल में जिया नहीं, तो फिर भावी पर्याय भी उस लायक कैसे मिल सकती है? बड़ा रहस्यपूर्ण है जीव सिद्धांत। अपने को समझो, हम कौन हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, हाँ, या कहाँ आए हैं? आर्यखंड में आए हैं। म्लेच्छखंड में होते तो ऐसी कोई स्वाध्याय नहीं और कुछ धर्म की चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं होता। अपन कहाँ हैं? आर्यखंड में आए हैं। आप लोग ये सुन रहे हैं ना, आप मनुष्यायु का भी बंद करेंगे तो ये निश्चित बात है, विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते, किंतु म्लेच्छखंड में आपका जन्म निश्चित नहीं होगा। थोड़ा सा भी परमार्थ का ज्ञान जुटाने के लिए या परमार्थ के प्रति कहीं थोड़ी सी रुचि जिसके जीवन में जागृत हो गई है, उसको म्लेच्छखंड तो मिलेगा नहीं, निश्चित है। इतना तो लाभ है। हाँ, इतना तो लाभ है, सुनने का ये लाभ है। महाराज, हमको समझ में नहीं आता ये जीव सिद्धांत, हमको क्या लेन देन इससे? ऐसा मत समझो, ये भावी में आपको पुनः आर्यखंड में ही पैदा कराएगा। विदेह क्षेत्र जाओगे, जिनवाणी को सुना हुआ व्यक्ति पुण्यार्जन करता है, ये पुण्य कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? विदेह क्षेत्र में ले जाएगा। कुछ त्याग नहीं किया, तपस्या नहीं की, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, कुछ नहीं किया, मरण के काल में केवल मंद कषायी होकर मरण किया, लेकिन स्वाध्याय किया था, रोज रोज प्रवचन सुने थे, ये कहां जाएगा? विदेह क्षेत्र का मनुष्य बन करके जन्म ले सकता है, क्योंकि इसको स्वाध्याय आदि के प्रति रुचि थी, और समोचरण में दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिल सकता है। किंतु सम्यक दृष्टि हो तो जरा घूम करके आना पड़ेगा। कहाँ? पहला देवगति में जाना पड़ेगा, फिर वहां से अंतर्मूर्त के भीतर समोचरण का दर्शन हो जाएगा, पर वहां जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं उसके बिना। त्रिरंच को भी रास्ता नहीं और हमको भी रास्ता नहीं। कोई त्रिरंच प्राणी सम्यक दृष्टि बन चुका है तो पहले वो देवगति में ही जाएगा, वहां से फिर समोचरण में आएगा, और निश्चित आएगा। सम्यक दृष्टि जीव तो समोचरण का ही शरण लेते हैं जाते ही, पहले वहां जन्म लेते ही अंतर्मूर्त में शरीर बड़ा हो जाता है, वहां उपवादशया पर, ऐसी उपवादशया शीप के आकार के होते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्र में, हमने तो नहीं देखा। ऐसे सीप के आकार के वो होते हैं, उपपाद शय्याएं, आत्मा यहाँ पर सम्यक दृष्टि आत्मा मरण करती है देवायु को बांधकर और वहां पर जाकर के पहुंच जाती है, उस शिप में पहुंचती है आत्मा। पहुंचने के अंतर मुहूर्त के अंदर उसका शरीर की रचना हो जाती, उठ करके बैठ जाता है वो, सब अलग अलग दिखता है। क्या है, सपना तो नहीं है, कहाँ आ गया मैं? तो अंतर्मुहूर्त व्यतीत होते ही उसको अवधि ज्ञान हो जाता है, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। उस अवधि ज्ञान से जान लेता है ये क्या है, कहाँ आया हूँ, कहाँ से आया, और ये सब क्या है, इतना सुंदर सुंदर ये जमीन और ये विमान और ये सभी वातावरण और ये भगवान अकृत्रिम चैतन्य की प्रतिमा, ये क्या है सब, ये अवधि ज्ञान से जान लेता है तो उसको पता चलता है कि मैं स्वर्ग में आया हूँ। कहाँ से आया, कोल्हापुर से आया। किसके आशीर्वाद से आया, महाराज ने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने भेज दिया हमको स्वर्ग। आशीर्वाद से कोई जा सकता है क्या? जाना तो आपको पड़ेगा। मरण करते समय सम्यक दर्शन की रक्षा करो, देवगति में जाओगी ही। जीते जी एक सम्यक तो को तो कम से कम छोड़ो मत, वो जिन धर्म का रत्न है उस रत्न को संभाल के रखो। कहीं किसी की बात नहीं सुनना, इधर उधर की बात नहीं सुनना, जिनवाणी में जो लिखा है उस रत्न को धारण करना और 25 दोष नहीं होना। 25 दोषों को जरा रत्नकरण श्रावकाचार खोल कर एक बार अध्ययन कर लो, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, कन्नड़ में भी है, सभी भाषाओं में रत्नकरण श्रावकाचार अनुवाद हो चुका है। 25 दोष और कुछ नहीं। किसी के दूसरे के चक्कर में मत रहो, तुम अपने चक्कर में रहो, आत्मा का हित करो, आत्मा के लिए सोचो, किसी के बंधन में नहीं रहना। केवल धर्म करते समय, संसार करते समय बंधन स्वीकार करना, ये काम है तुमको बाहर नहीं जाना है, ठीक है, काम है तो हम रहते हैं। वो धर्म सच्चा है, ये नकली है, इसी को करना पड़ेगा तुमको, नहीं, प्राण भी चले जाए तो इसको स्वीकार नहीं करना, उसी को स्वीकार करना। और 25 दोषों से बचना। रत्नगढ़ श्रावकाचार घर में है क्या? नहीं, यदि नहीं है तो एक ला करके रखो और उसका अध्ययन करो। मरण पर्यंत सम्यक दर्शन के दोषों से बचना। निर्मल सम्यक दृष्टि जीव नियम से देवगति में ही जाएगा और तत्काल अंतर मुहूर्त के भीतर तीर्थंकरों का सानिध्य मिलेगा, उपदेश सुनने को मिलेगा। और अगर वज्रषभ नारायणसनन मिल गया तो उसी भाव से मोक्ष भी जाएगा। संसार में वैसे ही भटक रहे हैं, मिथ्यात्व के साथ भी भटक रहे हैं, भटक चुके हैं अनादिकाल से, और सम्यक दर्शन के साथ भी भटकना पड़े तो भटकेंगे। भटकना तो दोनों तरह से है, यहां से मरे तो कहीं न कहीं जाएंगे, सम्यक दर्शन धारण करेंगे तो मरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे। अतः ऐसा एक बार क्यों न किया जाए, सम्यक दर्शन धारण करके ही मरे और संसार सागर से तरे, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? क्या बहुत डिफिकल्ट है सम्यक दर्शन भी? नहीं, सम्यक दर्शन अत्यंत सरल है, जिसमें कोई त्याग तपस्या नहीं, केवल अपने मन को अपनी आत्मा को मूढ़ताओं से बचाना है, अज्ञानता से बचाना है, असत्य से बचाना है। हम प्राय करके क्या करते हैं, असत्य को दूसरे से स्वीकार करके अपना जीवन बना देते हैं। मूढ़ताएं हमारे पास दूसरे से आती है, ये कुसंग है, कुसंगति में जाने के कारण हम बिगड़ते हैं। वो कुसंग वाला जो भी धर्म करता है वो अज्ञान वाला धर्म होता है, अज्ञान वाला धर्म, असत्य वाला होता है, उसको करता रहता है वो, उसको देखा देखी हम भी करते हैं तो हम भी भटक जाते हैं उनके साथ। कुसंगति में जाने से कुसंग होता है जीव, और सत्संग में आने से सत्संगी होता है। जिनवाणी का अध्ययन सत्संग है, और इस जिनवाणी को यथावत सुनाने वाले गुरु वो सत्संग हैं। और यथावत ही चर्चा करने वाले श्रावक परस्पर में ये जो साधर्मी वे सत्संग हैं। इन तीन सत्संगों में हमें रहना चाहिए। बहुत हो गया मिथ्यात्व करते करते, अब क्या करना है? अनंत बार किया है, एक बार जिनवाणी का अनुकरण करके निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करेंगे तो कितना बड़ा कल्याण होगा, निश्चित होगा। कोल्हापुर से एक बार मरण करके रिकॉर्ड बनाओ कोल्हापुर को कि हम कोल्हापुर से सम्यक दृष्टि बनकर मरे थे इसलिए स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी तक तो कोई नहीं आए थे, आप अकेले कैसे आ गए? अवश्य होगा, अवश्य होगा, तैयार तो हो रहे हैं, समझ रहे हैं, इतनी रुचि से सुनना, तैयार होना, ये सब कुछ हो रहा है। तो इतने ही लोग वहां चले जाएं तो लिस्ट में लिख करके रखेंगे देव लोग कि कोल्हापुर से इतने लोग कैसे आ गए, क्या कारण बना है इतने लोग आकर के। तो उसके साथ चातुर्मास का डेट भी लिख करके रखेंगे। ये ऐसा ऐसी तत्व चर्चा होने से हमारा मन मूर्ताओं से मुक्त होता है। हम कहां से आए, कहां जाना है, ये पता चल रहा है जिनवाणी से। त्याग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। वज्र वृषभ नाराज सनन मिलने के लिए कोई भी जीव वज्र वृषभ नाराज सनन प्राप्त करता है। वज्र वृषभ नाराज सनन का बंद देखो पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक ही होता है। ये नाम कर्म है, प्रथम नाम कर्म, और ये पुण्य प्रकृति है। इस पुण्य प्रकृति को करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, तीव्र कषाय को त्याग करना पड़ता है, सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं। वो छोड़ो, ये छोड़ो, वहां जाओ, यहां जाओ, वो करो, ये करो, सर्कस कुछ भी नहीं यहां। कषाय को मंद बनाए रखो, आपको वज्र वृषभ नाराज सनन का बंद हो जाएगा। निगोदी जीव को हो रहा है तो आप को क्यों नहीं होगा? पहले गुणस्थान में रहने वाले को भी ये हो सकता है बंद, दूसरे गुणस्थान में भी हो सकता है, तीसरे गुणस्थान में भी हो सकता है, और चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है। पहले से तीसरे गुणस्थान तक इसका बंद है, आगे नहीं है। पंचम गुणस्थान में जाएंगे तो नहीं है, तो फिर वो कैसे क्या करेंगे, तो वो कैसे क्या करेंगे? वज्र वृषभ नाराज सनन का बंद वो व्यक्ति करता है जिसको इस भव से पुनः मनुष्य भव में ही जन्म लेना है, या तो त्रिंच गति में जन्म लेना है। देवगति में जन्म लेने के लिए वज्र वृषभ नाराज सनन का बंद जरूरत नहीं है। देव सनन मुक्त हैं, उनको कोई सनन नहीं होता। तो देवगति में जा रहे हैं तो आपको कोई सनन का बंद आवश्यक नहीं। आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो ये वज्र वृषभ नाराज सनन आपको बहुत सहयोग देगा मोक्ष जाने के लिए, इसलिए ये चाहिए। तो इसको बांधना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, ये प्रश्न था। कुछ नहीं करना पड़ता है, सर्कस कुछ भी नहीं करो, कषाय मंद रखो। मंद कषायी निगोदी जीव एक इंद्री एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, इतना संकलिश है, कदाचित उसके लॉटरी जैसा, मतलब तीव्र कषाय तो सतत रहते हैं इसलिए निगोद अवस्था को छोड़ता नहीं है वो, कदाचित मंद कषाय भी हो सकता है उसमें। और कषाय अनंत अनुबंधी का उदय है, वहां अनंत अनुबंधी कषाय का मंदोदय हो गया तो तत्काल मनुष्य गति मनुष्य आयु के बंद के परिणाम बन जाते हैं, और मनुष्य आयु का बंद होता है, मनुष्य गति और वज्र वृषभ नारा सहनन ये सब बंद हो जाता है वहाँ, और वह वहाँ से आकर के सीधा ही मनुष्य बनता है, वज्र वृषभ नारा सहननधारी आर्यखंड का मनुष्य बन गया, निगोदी जीव एकेंद्री आर्यखंड का मनुष्य बन गया, तीर्थंकरों का सानिध्य पा गया, और उसको वैराग्य हो गया, जाति स्मरण से समझ में आया कि संसार में कुछ नहीं, जन्म मरण के अलावा हम अनंत काल से संक्लिष्ट परिणामों से निगोद में मर चुके हैं, ऐसा दुख हमें पुनः नहीं चाहिए, ऐसा वैराग्य प्राप्त होता है। अगर हम कल्याण नहीं करेंगे, अपना रत्नत्रय धारण नहीं करेंगे, तो पुनः निगोद जाना पड़ेगा। इस प्रकार से निगोद का चिंतन करता है वो जाति स्मरण से, जाति स्मरण से वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य होने से सभी संसार विषय कषायों को छोड़ने के भाव जग जाएंगे, और वह त्याग कर देगा, तपस्या में बैठ जाएगा। मान के चले कि वह 8 साल का ही हुआ है मनुष्य, निगोद जीव मरा, मनुष्य बना, 8 साल अंतर्मुहूर्त पर्याप्त है रत्नत्रय धारण करने के लिए, छोटी अवस्था में भी संभव है। 8 साल अंतर्मुहूर्त, जैसे भर चक्रवर्ती की यह उदाहरण सुनाया था ना, वो सब छोटे थे, 8 साल अंतर्मुहूर्त बड़े हो जाएं तो आपको संयम धारण करने की पात्रता आ जाती है, और छोटी उम्र में ही आपने वो कर लिया, दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा ले ली, 8 साल की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली, परिग्रह सब छोड़ दिया और ध्यान में बैठ गए, केश लोंच किया, दिगंबर दीक्षा लिया, तीर्थंकर के सानिध्य में ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए तो केवल ज्ञान ही हो गया, वज्रषभ नारायण सनन था, केवल ज्ञान हो गया। जब एक निगोदी जीव को केवल ज्ञान हो सकता है, जब एक निगोदी जीव को वज्रषभ नारायण सनन का बंद हो सकता है, तो हमको क्यों नहीं हो सकता? हम सम्यक दृष्टि हो तो भी हो सकता है, और मिथ्या दृष्टि हो तो भी हो सकता है, लेकिन देव गति में जाना जिनको फिक्स हो गया है, वो वज्र वृषभ नारायण सनन बंद किया हुआ कुछ काम में आने वाला नहीं है। जिनको मनुष्य गति में जाना है उनको काम में आने वाला है। तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए। हाँ, हो गया है, लेकिन देखो उसके साथ मनुष्य आयु को भी बंद करना पड़ेगा, तब वो काम में आएगा। किया है तो दो मार्ग हैं उसके लिए। वज्रषभ नारायण सनन का बंद हो गया, अब ये व्यक्ति आर्यखंड में भी जन्म ले सकता है और म्लेच्छ खंड में भी जन्म ले सकता है। मंद कषाय हुआ है इसलिए वज्रषभ नारायण सनन का बंद हो गया। अब धार्मिक माहौल में आप रहे नहीं, जिंदगी पूरा विषय कषायों में गया, भौतिकता में गई, तो आप म्लेच्छ खंड का मनुष्य बनेंगे, और थोड़ा बहुत धार्मिक संस्कार लेंगे, परिणाम इधर रहेंगे, तो आप आर्यखंड के मनुष्य बनेंगे, तो वहां से मोक्ष भी संभव है, विदेह क्षेत्र में जा सकते हैं। हाँ, भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्रों में भी यदि चतुर्थ काल आया है तो वहां भी जाकर मोक्ष जा सकते हैं। वर्तमान का है तो फिर विदेह क्षेत्र के बिना कोई रास्ता नहीं, वर्तमान में ही जाना चाहते हैं तो मिथ्यात्वी रहना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। विदेह क्षेत्र के लिए मनुष्य ही बनना है तो मिथ्यात्व के साथ ही जाना पड़ेगा, ये तो है। ऐसा भी हो सकता है, देखो मनुष्य बनने के, मनुष्य आयु का बंद किया, फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, पहला मनुष्य आयु का बंद किया, वज्रषभ नारायण सनन का बंद किया, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, किंतु वह सम्यक दर्शन टिका नहीं, नष्ट हो गया, उतर करके दूसरे गुण स्थान में आ गया, आपका मरण हो गया। तो दूसरे गुण स्थान के साथ मरण करेंगे तो फिर आर्यखंड का मनुष्य भी आप बन सकते हैं, परंतु सम्यक्त्व के साथ मरण होगा तो भोग भूमि का मनुष्य बनना पड़ेगा, भोग भूमि के मनुष्य बन करके जन्म ले सकते हैं। दोनों संभव है, सम्यक दृष्टि है तो च्युत होना पड़ेगा आर्यखंड में जन्म लेने के लिए, और सम्यक दर्शन से च्युत होना ये कोई खेल नहीं। हमको सम्यक दर्शन नहीं चाहिए कहने से वो जाएगा नहीं, हाँ तद योग्य परिणाम से ही वो जाएगा, लेकिन मरण के काल में ये सब कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा बंधा है और कर्म कहाँ हमें ले जा रहा है, ये कुछ भी पता नहीं चलने वाला। सिर्फ अपने अधीन में पुरुषार्थ इतना ही है, पुरुषार्थ की अधीनता इतनी ही है कि हम अच्छा कर सकते हैं मरण के काल में, मंद कषाय से मरण करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। जाना, कर्मों को जहाँ ले जाना वो उसके ऊपर है, परिणाम अपने अंडर में है तो कर्म अपने अंडर में, परिणाम अपने अंडर में नहीं है तो कर्म भी अपने अंडर में नहीं, फिर तो कहीं भी ले जाएगा, निगोद भी ले जा सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त किया, च्युत हो गए, त्रिरंच आयु का बंद किया था पहले ही यानी सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले ही त्रिरंच आयु का बंद किया था, चतुर्थ गुण स्थान में गया, बहुत समय तक सम्यक्त के साथ रहा, नीचे उतर के आया, एकेंद्री पर्याय का बंद पहले गुण स्थान में करता है जीव करते समय, और पहले गुण स्थान में आया, मरण किया, निगोद में पहुंच गया, जहां थे वहीं अपने अपने घर में। हमारा अनादिकालीन शाश्वत घर तो वो है निगोद, वहां पहुंच गए, और फिर कब लौटोगी कोई भरोसा नहीं है, वो लॉटरी के समान है भैया। हाँ वापस आएगा निश्चित है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर नियम से वापस आएगा, लेकिन जल्दी का आएगा या नहीं ये नहीं कह सकते, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वहीं पर रह करके भी व्यतीत कर सकता है समय को। अर्धपुद्गल परावर्तन काल सक्षय अनंत काल है, अनंत के पास पास का काल है, वो भी अनंत है, सक्षय अनंत है, यानी असंख्यात अनंत भव आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अक्षय अनंत से बहुत छोटा है वो। अक्षय अनंत काल जो होता है उसका कोई आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, मध्य भी नहीं, वो सबसे बड़ा अनंत, उसके सामने तो एक छोटा है ये सक्षय अनंत। सक्षय अनंत को अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहा है ऐसा। हाँ कहाँ पर निर्जरा हो जाए, हाँ हाँ मोक्ष जाना चाहिए। कौन कह रहे हैं निर्जरा होने के बाद भी वो जीव संसार में भटकता है, कौन कह रहे हैं? हाँ निर्जरा करके ही मोक्ष जाता है और कहीं नहीं जाता, संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होने के बाद मोक्ष ही मिलता है, ऐसा कौन कह रहे हैं कि संसार में भटकता है, पूछ रहे हैं। ठीक नीचे देखो, टाइम हो गया थोड़ा सा, ये मनुष्य गति का तो पूर्ण कर ले, ये देखो नीचे वाला मनुष्य गति का 850 म्लेच्छ खंडज मनुष्य व 170 आर्य म्लेच्छ, देखो दो प्रकार के म्लेच्छ हैं। म्लेच्छ खंडों में जो रहने वाले मनुष्य हैं वो तो प्योर म्लेच्छ मनुष्य हैं, और आर्य खंड में भी म्लेच्छ मनुष्य रहते हैं जो धर्म कर्म से बिल्कुल दूर रहते हैं। जिनेंद्र भगवान की तत्व की चर्चा से, तत्व से बिल्कुल दूर रहते हैं, ये प्राप्त नहीं होता कहो या उनका भाग्य नहीं है कहो, कहीं भी जन्म हुआ है, किसी अन्य अन्य जगह जन्म हुआ या इसी कुल में जन्म लेने के बाद भी इस तरफ परिणाम नहीं हुए, जिंदगी उसी में व्यतीत हो गया, ऐसे कितने लोगों का हुआ है इतिहास में सत्संग न होने से। हमारे वंशज बिल्कुल धर्म कर्म नहीं पता लगाते हुए भी गए हैं, ऐसे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। विगत 700-800 साल के बीच में कोई दिगंबर मुनियों का विहार नहीं होता था भारत में, ऐसी परिस्थिति में कोई स्वाध्याय करने वाला, कराने वाला, संस्कार देने वाला कोई भी नहीं था। म्लेच्छ खंड जैसा ही था, धर्म कर्म का संस्कार कुछ भी नहीं रहा विगत काल में। हम लोगों का भाग्य है तो इतना तो मिल रहा है, किसी किनारे में हम बैठ करके तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, किनारे में, कोल्हापुर के किनारे में, ऐसी तत्व चर्चा कहाँ मिलती है। 800 साल तक लोगों को नहीं मिला जो इसी कुल में जन्मे, अब मिल रहा है, कितना बड़ा भाग्यशाली है हम। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने वाला भी बहुत पुण्यशाली होता है, क्षयोपशम होता है, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान के आयतन, ज्ञान की सुविधाएं प्राप्त करने के माध्यम साधन प्राप्त होते हैं। आप सभी लोगों का ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम है तभी आए हैं, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम, और ये इसका तीव्रोदय हो तो इधर आने के परिणाम नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। पांच कितने हैं म्लेच्छ खंड, 850 म्लेच्छ खंडज हैं मनुष्य, 170 आर्य म्लेच्छ, यहाँ पर जो दूर रहते हैं धर्म कर्म से, धर्म नामक कोई चीज ही मालूम नहीं है, वो कौन कहलाते हैं, आर्य म्लेच्छ। वो किसी भी कुल में पैदा क्यों नहीं हुए हों, उनको म्लेच्छ ही कहते हैं, म्लेच्छ आर्य म्लेच्छ हैं वो। धर्म धर्म की, धर्म नामक शब्द ही मालूम नहीं है, अर्थ ही मालूम नहीं है, स्वरूप ही मालूम नहीं है, दूर दूर रहते हैं तो आर्य म्लेच्छ, आर्य म्लेच्छ, आर्य खंड में रहते हुए म्लेच्छ के समान प्रवृत्ति रखने वाले। इनके पास कितने गुणस्थान होते हैं देख लो, पर्याप्तक अवस्था में एक ही होता है, और निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है या नहीं, यहाँ टिप्पणी में दिया है, जो त्रिकोण आकार का टिप्पणी है, आगम आधार प्राप्त नहीं हुआ है यह चिंतनीय है, लिखा है। दूसरा गुणस्थान हो सकता है क्या नहीं, इसको बहुत ढूंढा गया लेकिन मिला नहीं, तो दूसरा गुणस्थान होता है या नहीं होता, इस बात की चर्चा हम विदेह क्षेत्र में जाने के बाद तीर्थंकर के भगवान के चरणों में करेंगे, अभी तो क्वेश्चन मार्क ऐसा ही रखा है, वहां जाने के बाद करेंगे इसलिए रखा है क्वेश्चन मार्क। पर्याप्तक अवस्था में कितने गुणस्थान होते हैं, तो बताया पहले से 14 गुणस्थान भी हो सकते हैं, इसके लिए भी क्वेश्चन मार्क रखा है। क्या रखा है, आगम आधार प्राप्त नहीं हुआ है यह चिंतनीय है। तो म्लेच्छ खंड के लोग म्लेच्छ खंड से आर्य खंड में आते हैं तो गुणस्थान परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन वहीं रहते हुए 14 गुण स्थान नहीं हो सकते, ये तो नियम है, परंतु वहां से यहां आते हैं तो 14 गुण स्थान सारे हो सकते हैं क्या? तो इसके लिए कोई आधार अभी मिला नहीं है। यदि मिल जाए किसी को तो हमारे पास ले आना, इस क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? एक या दो? ये किसका है? अ ब ऐसा दो दिया है ना, तो ब ब किसका है ऊपर? हाँ, आर्यम्लेच के लिए है। तो आर्यम्लेच के लिए भी 14 गुण स्थान हो सकते हैं, ऐसा आगम आधार नहीं मिलता। जैसे आर्यखंड में आदिवासी आदि रहते हैं, आदिवासी जो बिल्कुल ही जंगल में रहते हैं और उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता है, नागरिकता तक उनको मालूम नहीं रहती है। अगर उनमें नागरिकता लाया जाए, संस्कार दिया जाए और धर्म के संस्कार भी डाला जाए तो उनके कितने गुणस्थान हो सकते हैं? तो इसके लिए 14 गुणस्थान हो सकते हैं, ऐसी परिकल्पना। मान लो वज्रषभ नारायण सनंदधारी भी है, हो सकता है आदिवासी, आज नहीं चतुर्थ काल में इसी आर्यखंड में जन्मे वाले, तो पहले सनन वाले भी हो सकते हैं। उनको नागरिकता और धार्मिक संस्कार जगाया जाए तो उनको 14 गुणस्थान प्राप्त हो सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन आने पर उसका भी आधार नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए क्वेश्चन मार्क रखा है, आगम में नहीं मिलता। निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में पहला दूसरा गुणस्थान इनको हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरे गुणस्थान के साथ भी मरण किया हुआ वहां का जीव यहाँ आर्यखंड में दूसरे गुणस्थान के साथ जन्म ले सकता है, ये है। अब ये इस बाजू में त्रिरंचों की चर्चा है, कर्मभूमिज त्रिरंच। क्या दो मिनट और ले लें, त्रिरंच का खत्म कर दें? हाँ, कर्मभूमिज त्रिरंच, हाँ भोगभूमिज, भोगभूमिज मनुष्य की चर्चा। भोगभूमिज मनुष्य पर्याप्तक अवस्था में इनको कितने? एक से चार गुणस्थान हो सकते हैं। तो ये भोगभूमि का अर्थ सुभोगभूमि मनुष्य, इनको एक से चार से आगे के गुणस्थान नहीं होते। निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में इनके पहले दूसरे और चौथे चार गुणस्थान हो सकते हैं। तीसरा क्यों नहीं है? तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है तो वहां से निकलना संभव नहीं, जहां से मरण कर रहा है वहां से निकलकर यहाँ आना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ तीसरा गुणस्थान नहीं। तीसरे गुणस्थान में न जन्म है न मरण। पहले गुणस्थान में जन्म भी है मरण भी है, दूसरे गुणस्थान में जन्म भी है मरण भी है। अच्छा, मरण के कौन कौन से गुणस्थान हैं? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा और चौदहवा, और चौदहवा बीच में दो छूट गए, बारहवा और तेरहवा, इन गुणस्थानों में मरण नहीं होता, और एक छूट गया तीसरा, इस गुणस्थान में भी मरण नहीं होता। मरण के ये गुणस्थान हैं। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जिस गुणस्थान में मरण भी हो सकता है और जन्म भी हो सकता है, ऐसे कितने गुणस्थान हैं? पहला, दूसरा और चौथा, तीन ही गुणस्थान हैं। इन गुणस्थानों में जन्म भी हो सकता है मरण भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा कौन सा गुणस्थान है जिस गुणस्थान में केवल जन्म ही होता है मरण नहीं होता? ऐसा कौन सा गुणस्थान है जिसमें केवल जन्म ही हो और मरण न हो? चौदहवा, चौदहवा के बाद जन्म हो जाए तो फिर संसारी बनेंगे सिद्ध भगवान। दूसरा क्यों? जन्म नहीं है क्या? मरण नहीं तो मरे बिना आया कैसे यहां दूसरे गुणस्थान के साथ? मरण भी तो है, मरण भी है। नहीं, एक भी गुणस्थान नहीं है। केवल जन्म ही हो और मरण न हो उस गुणस्थान में, तो ऐसा गुणस्थान एक भी नहीं है। दो ही प्रकार के गुणस्थान हैं, जन्म मरण दोनों हैं एक बात, या तो मरण है एक बात, या तो मरण ही है केवल, केवल मरण ही हो ऐसे कोई कितने गुणस्थान है, कहां से? केवल मरण ही हो जन्म ना हो ऐसे कितने गुणस्थान? क्यों क्यों फिर उसे शेष गुणस्थान में जहां मरण है उसके साथ जन्म भी है क्या? हाँ, पांच से चौदह मत कहो, हाँ पांच से ग्यारह और चौदह, पांच से ग्यारह और चौदह, इन गुणस्थानों में केवल मरण ही होता है, इन गुणस्थान सहित हम जन्म नहीं ले सकते। मरण अगर इन गुणस्थानों में हो गया तो इस गुणस्थान को छोड़ना पड़ेगा और जन्म लेने के गुणस्थान को धारण करके ही जन्म लेने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण, एक मुनि महाराज का समाधि मरण हुआ आज पंचम काल में, किस गुणस्थान में समाधि मरण हुआ? छठे या सप्तम गुणस्थान में पंडित मरण किया। सातवें मरण के काल में सातवां गुणस्थान था क्या? नहीं, सल्लेखना मरण उसके बिना होता नहीं है। सातवें गुणस्थान में अगर मरण हुआ तो ही वह पंडित मरण कहलाता है, नीचे आने के बाद मरण किया तो वह पंडित मरण नहीं। मरण तो हमें सातवें गुणस्थान में ही करना है, ये सल्लेखना है। सातवें में मरण करने का पुरुषार्थ ही सल्लेखना पुरुषार्थ है, नीचे न आ जाएं हम मरण के काल में। मरण वहीं करे, लेकिन मरण होने के पश्चात आत्मा विग्रह गति में आती है। इधर मरण हुआ तो मतलब क्या हुआ? मनुष्यायु समाप्त हो गई और अगली आयु स्टार्ट हो गई। एक पेट्रोल टैंक खत्म हो गया, विमान में दो टैंक होते हैं, एक अगर पेट्रोल टैंक खत्म हो गया तो दूसरा तत्काल शुरू कर देते हैं। वैसा एक मनुष्यायु जो हम अनुभव कर रहे थे, ये वर्तमान की मनुष्यायु समाप्त हो गई, मरण हुआ, मनुष्यायु के समाप्ति के बाद मरण हुआ, तत्काल मरण के दूसरे समय में ही देवायु का उदय हुआ, देवगति का उदय हुआ, यहीं पर देवगति का देवायु का उदय हुआ और हम रवाना कर गए यहां से। विग्रह गति में किस आयु का उदय है? देवायु का। किस गति का उदय है? देवगति का। देवगति का उदय होते ही चौथा गुणस्थान हो जाता है हमारा, जिसका पंडित मरण हो गया है, सल्लेखना मरण हो गया है, वो सम्यक तो साथ ही जाएगा विग्रह गति से, वो मिथ्यात्व के साथ नहीं जाएगा। मिथ्यात्व के साथ जाना हो तो सल्लेखना मरण के साथ मरना नहीं पड़ेगा, मिथ्यात्व के साथ जाना हो तो पहले गुणस्थान में आओ और यहाँ मरण करो, फिर मनुष्यायु समाप्त होगी, फिर उसी गुणस्थान के साथ हम दूसरी गति में जा सकते हैं विग्रह गति से। टाइम बहुत हो जाएगा, चर्चा बढ़ती जाती है। जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।